आमतौर पर जब हम किसी नियम या कानून की व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है, मतलब जैसे कोई इंजीनियरिंग का डिजाइन हो।
बिल्कुल, एकदम मापी तुली चीज।
हाँ, आप कोई अपराध करते हैं तो आपको सजा मिलती है, आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको इनाम मिलता है। सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जहाँ कर्मों का सीधा असर उनके परिणामों पर दिखता है।
और असल में इंसानी दिमाग को ऐसी व्यवस्था बहुत पसंद आती है ना, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो, जिसे आसानी से मापा जा सके, जहाँ हम अपनी मेहनत के आधार पर समाज में अपना रुतबा तय कर सकें।
लेकिन तब क्या हो जब हम प्रथम शताब्दी के रोम के इतिहास में प्रवेश करें, एक ऐसी अवधारणा जहां ये पूरी स्थापित व्यवस्था ही उलट जाती है।
वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पूरी तरह से धुंधली हो जाती है।
एकदम सही कहा। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ और उसके अकादमिक विश्लेषण के स्रोत खंगाल रहे हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह झकझोर देता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर क्रेग कीनर के उस बेहतरीन अकादमिक व्याख्यान की जो उन्होंने रोमनों की किताब के अध्याय 3 से लेकर 5 पर दिया है।
जो कि अपने आप में एक बहुत ही गहरा विषय है।
बिल्कुल, और हमारा मिशन आज इस डीप डाइव में ये समझना है कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि पूरी मानवता, चाहे उनका धार्मिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, ईश्वर के सामने बिल्कुल एक समान धरातल पर खड़ी है, और कैसे कृपा या ग्रेस की अवधारणा ने ओमधार्मिकता को कमाने के विचार को हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कोई आम धार्मिक चर्चा नहीं है, ये इतिहास, न्याय और इंसानी मानसिकता का एक शानदार संगम है।
हाँ, और इस चर्चा की गहराई को समझने के लिए ना, हमें उस समय के समाज की नब्ज को पकड़ना होगा। देखिए, हम प्रथम शताब्दी के रोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं। उस समय समाज में यहूदी और गैर यहूदी लोगों के बीच एक बहुत बड़ी, लगभग अभेद्य दीवार थी।
एक तरह का भारी सांस्कृतिक फासला है ना?
बिल्कुल, यहूदियों के पास सदियों पुराने नियम और परंपराएं थीं जिन पर उन्हें बहुत गर्व था, और दूसरी ओर गैर यहूदी थे जो एक अलग ही बहुदेववादी संस्कृति से आते थे। तो डॉक्टर कीनर अपने व्याख्यान में बताते हैं कि कैसे पॉल, जो इस ग्रंथ के लेखक हैं, उस दीवार को पूरी तरह से गिराने का तर्क करते हैं।
दीवार को गिराना, मतलब पॉल कह रहे हैं कि किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है।
एकदम सही, उनका मुख्य तर्क यह है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी नियम को मानता हो या ना मानता हो, अपनी नैतिक विफलताओं के कारण बिल्कुल एक ही स्तर पर खड़ा है।
अच्छा, तो अगर हम सब अपनी कमियों के कारण एक ही समान धरातल पर हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस खाई को पाटा कैसे गया?
यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
हाँ, क्योंकि स्रोत में डॉक्टर कीनर एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुक्ति, या अंग्रेजी में रिडेम्पशन। अब आज के दौर में तो हम इस शब्द का इस्तेमाल बहुत हल्के में कर लेते हैं, जैसे कोई कूपन रिडीम करना हो।
हाँ, आज इसका मतलब बहुत बदल गया है, लेकिन प्राचीन रोमन दुनिया में इसका मतलब सीधा और कह सकते हैं थोड़ा खौफनाक था। ये दासों के बाजार से जुड़ा था।
दासों का बाजार, मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त।
बिल्कुल, जरा सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां इंसानों की बोली लग रही है। जब कोई गुलाम वहां बिक रहा होता था तो कोई धनी व्यक्ति उसकी कीमत चुकाकर उसे हमेशा के लिए आजाद कर सकता था। इस प्रक्रिया को रिडेम्पशन कहा जाता था।
ओहो, तो ये एक बहुत ही भारी कीमत चुकाने वाली बात थी।
हाँ, और अगर हम इसे यहूदी नजरिए से देखें तो ये शब्द सीधे तौर पर एक्सोडस की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता था जब पूरे समुदाय को मिस्र की गुलामी से आजाद किया गया था। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि डॉक्टर कीनर एक और गहरी बात सामने लाते हैं, ऑलरेडी नॉट येट का सिद्धांत।
ऑलरेडी नॉट येट, पॉल का मतलब था कि मुक्ति मिल तो गई है लेकिन अभी पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतरी है।
बिल्कुल, कीमत चुका दी गई है लेकिन असर पूरी तरह से भविष्य में दिखेगा।
पता है, ये ऑलरेडी नॉट येट वाला सिद्धांत मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगा। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने एक घर खरीदा है, पूरा पैसा दे दिया गया है, रजिस्ट्री हो गई है, कागजात आपके नाम हो गए हैं।
हाँ, कानूनी तौर पर आप मालिक हैं।
कानूनी तौर पर घर मेरा है, लेकिन बिल्डर कहता है कि आपको घर की चाबियां मिलने में अभी कुछ समय लगेगा। मतलब मैं मालिक तो बन गई हूँ लेकिन अभी उस घर में रह नहीं रही हूँ।
ये उपमा एकदम सटीक है। आध्यात्मिक अर्थों में प्राचीन ग्रंथ के अनुसार इंसान की कीमत पूरी तरह चुका दी गई है, उसे अतीत की गुलामी से आजाद कर दिया गया है। ये ऑलरेडी वाला हिस्सा है।
और नॉट येट वाला हिस्सा?
वो ये है कि इंसान का शरीर अभी भी उसी भौतिक दुनिया का हिस्सा है जो बीमारियों और मृत्यु का शिकार होती है। शरीर का उस क्षय से आजाद होना भविष्य की बात है, ये नॉट येट है।
तो इंसान एक आजाद नागरिक भी है और संघर्ष भी कर रहा है। इसी मुक्ति को समझाते हुए स्रोत में एक और भारी भरकम ग्रीक शब्द का जिक्र आता है, हिलास्टेरियन।
हाँ, हिलास्टेरियन।
डॉक्टर कीनर इसे समझाते हुए प्राचीन यहूदी मंदिर के पवित्र संदूक यानी आर्क ऑफ द कवेनेंट के ढक्कन का जिक्र करते हैं, जिसे मर्सी सीट भी कहा जाता था।
सही कहा। हिलास्टेरियन वो विशिष्ट स्थान था जहां साल में एक बार प्रायश्चित के दिन पर महायाजक खून छिड़कता था।
अच्छा, तो ये वो बिंदु था जहां ईश्वर की पवित्रता और इंसानी कमियों का मिलन होता था।
बिल्कुल। और डॉक्टर कीनर बताते हैं कि पॉल यहां यीशु के बलिदान की तुलना उसी ढक्कन, उसी मर्सी सीट से कर रहे हैं। यीशु अब वो स्थान बन गए हैं जहां एक पवित्र ईश्वर उन लोगों से मिलता है जिन्हें क्षमा किया जा चुका है।
कि मेरे ऊपर करोड़ों का कर्ज है और कोई अनजान व्यक्ति आकर बिना मुझे बताए मेरा सारा कर्ज चुका देता है, ये तो खूबसूरत बात है।
हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन श्रोत में यहाँ ईश्वर के क्रोध या रात को शांत करने की बात की गई है। मतलब आधुनिक समय में किसी देवता के क्रोध को शांत करने के लिए खून बहाना, क्या ये विचार बहुत ही आदिम नहीं लगता?
ऐसा लगता है कि
ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्तिशाली सत्ता अपना आपा खो बैठी हो और उसे शांत करने के लिए किसी की जान लेनी पड़े।
देखिए, आज के कई आधुनिक धर्मशास्त्री भी इस शब्द से असहज महसूस करते हैं, लेकिन डॉक्टर कीनर बहुत स्पष्टता समझाते हैं कि प्राचीन ग्रंथ में ईश्वर के क्रोध को इंसानी गुस्से या टेम्पर टैंट्रम के रूप में नहीं देखा गया है।
तो फिर ये किस तरह का क्रोध है?
या क्रोध विशुद्ध रूप से ब्रह्मांडीय न्याय पर आधारित है। इसे ऐसे समझिए, अगर दुनिया में भयंकर अन्याय, शोषण और बुराई हो रही है तो एक पूरी तरह से न्यायपूर्ण सत्ता उस पर क्रोधित क्यों नहीं होगी?
अगर वो क्रोधित नहीं है तो वो न्यायपूर्ण नहीं है।
एकदम सही। और प्रथम शताब्दी के यहूदियों के लिए ये कोई अजीब विचार नहीं था। सेकंड और फोर्थ में कावीज जैसे प्राचीन ग्रंथों में शहादत के जरिए क्रोध शांत होने का विचार पहले से मौजूद था।
अच्छा, मतलब किसी निर्दोष व्यक्ति का अन्यायपूर्ण तरीके से दुख सहना दूसरों के लिए न्याय की मांग को पूरा कर सकता है।
बिल्कुल, यही मान्यता थी।
लेकिन देखिए, अगर न्याय की इतनी ही परवाह है और हर गलत काम की सजा मिलनी ही चाहिए, तो यहीं से एक बहुत बड़ा तार्किक संकट पैदा होता है।
वो कैसे?
क्योंकि पॉल रोमनों 4:5 में एक ऐसा दावा करते हैं जो एक धमाके जैसा है। वे कहते हैं कि ईश्वर दोषियों को बरी करता है।
हाँ, ये बात उस समय के हिसाब से बहुत भड़काने वाली थी।
जरा सोचिए, एक्सोडस में तो साफ साफ लिखा है कि दोषियों को बरी नहीं किया जाना चाहिए। अगर आज कोई जज किसी ऐसे अपराधी को छोड़ दे जिस पर आरोप साबित हो चुके हों, तो हम उसे भ्रष्ट जज कहेंगे, है ना? फिर यहाँ ईश्वर की न्यायप्रियता कैसे सुरक्षित रही?
यही वो विरोधाभास है जो पॉल के तर्क का केंद्र है। वे जानबूझकर ऐसी भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग चौंक जाएं। डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पॉल एक ग्रीक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिजोमाए।
लॉजिजोमाए, ये तो कोई अकाउंटिंग का शब्द लगता है।
बिल्कुल, यह प्रथम शताब्दी के बही खाते का ही शब्द है। इसका मतलब है किसी के खाते में कुछ जमा करना। पॉल कह रहे हैं कि ईश्वर यहाँ लोगों को उनके अच्छे कर्मों का वेतन नहीं दे रहा है, बल्कि उनके खाते में धार्मिकता जमा कर रहा है जिसके वे हकदार नहीं थे।
मतलब इसे हम ऐसे समझें कि यह महीने के अंत में मिलने वाली वो सैलरी नहीं है जो आपने 30 दिन की हाड़ तोड़ मेहनत से कमाई हो।
हाँ, सैलरी तो आपका हक होती है,
बल्कि ये एक ऐसा बोनस है जो कंपनी के मालिक ने अपनी मर्जी से बिना आपके काम को देखे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है।
ये तुलना काफी हद तक सही है। पॉल जिस धार्मिकता की बात कर रहे हैं वो एक उपहार है। और रही बात उस भ्रष्ट जज वाले सवाल की, तो डॉक्टर कीनर बताते हैं कि ईश्वर की धार्मिकता में दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं।
कौन सी दो चीजें?
पहला है न्याय और दूसरा है अनुबंध के प्रति वफादारी, यानी कोविनेंट फेथफुलनेस। न्याय यह मांगता है कि पाप की सजा मिले और वो सजा यीशु के ऐतिहासिक बलिदान के रूप में दी गई।
अच्छा, तो न्याय का तकाजा ऐसे पूरा हुआ।
हाँ, और वफादारी ये मांगती है कि ईश्वर इंसानों को बचाने का अपना पुराना वादा पूरा करे। इसीलिए कर्मों के नियम की जगह विश्वास के नियम को स्थापित किया गया।
और स्रोत में पॉल यहाँ दाऊद का भी उदाहरण देते हैं ना, जहाँ दाऊद उस खुशी का वर्णन करते हैं जब ईश्वर किसी के अपराधों का हिसाब अपने बही खाते में नहीं रखता।
बिल्कुल, भजन संहिता 32 में।
यहाँ आकर बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर विश्वास के नियम को सर्वोच्च मान लिया जाए तो सदियों पुराने नियमों और रीति रिवाजों का क्या होगा?
वो सब तो पृष्ठभूमि में चले जाएंगे।
हाँ, और पॉल को अपने इस क्रांतिकारी विचार को साबित करने के लिए इतिहास के सबसे बेहतरीन केस स्टडी की जरूरत थी, और वे चुनते हैं अब्राहम को, जिन्हें पूरे यहूदी धर्म का पिता माना जाता है।
और पॉल उन्हें घुमाकर गैर यहूदियों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बना देते हैं।
उस समय के समाज के लिए ये बात पचानी कितनी मुश्किल रही होगी।
बहुत मुश्किल। डॉक्टर कीनर यहाँ चार्ल्स टेलबर्ट नामक विद्वान का हवाला देते हैं। टेलबर्ट बताते हैं कि प्राचीन यहूदी विचारक अपने तर्कों के लिए इतिहास के अलग अलग अनुबंधों का इस्तेमाल करते थे। पॉल जानबूझकर मूसा के कानून से भी बहुत पहले अब्राहम वाले अनुबंध को सामने लाते हैं।
हाँ, जेनेसिस 15 आयत 6, जहाँ अब्राहम ने ईश्वर पर विश्वास किया और उसे उनके लिए धार्मिकता मान लिया गया।
बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा ऐतिहासिक ट्विस्ट क्या है पता है?
क्या? ये घटना उनके खतने यानी सर्कमसिजन से 13 साल पहले हुई थी। खतने का नियम तो जेनेसिस 17 में आता है।
वो 13 साल पहले?
इसे मैं ऐसे देखती हूँ, मान लीजिए आपको किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव महंगे वीआईपी क्लब की मेंबरशिप मिल जाती है।
अच्छा उदाहरण है।
आप क्लब की हर सुविधा का मजा ले रहे हैं, लाउंज में बैठ रहे हैं, और ये सब आपको सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि क्लब के मालिक को आप पर भरोसा था। और फिर ठीक 13 साल बाद डाक से आपका प्लास्टिक का मेंबरशिप कार्ड आता है।
क्या बात है, बिल्कुल सही।
वो कार्ड यानी खतना सिर्फ एक बाहरी निशान था। असली मेंबरशिप तो 13 साल पहले ही बिना किसी शारीरिक कर्मकांड के मिल चुकी थी।
इस उपमा ने पॉल के तर्क को बहुत आसानी से पकड़ लिया है। कार्ड होने या न होने से मेंबरशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसी कालक्रम की वजह से पॉल ये साबित कर पाते हैं कि अब्राहम उन लोगों के भी आध्यात्मिक पिता बन गए जो बिना किसी बाहरी निशान के ईश्वर से जुड़ते हैं।
और इस स्रोत में धर्मशास्त्री एंटी राइट की एक बहुत ही शानदार तुलना भी है ना।
हाँ, राइट बताते हैं कि रोमनों के अध्याय 1 में मानवता ईश्वर की शक्ति को नजरअंदाज करती है, मृत्यु की ओर जाती है, लेकिन इसके ठीक विपरीत अब्राहम का जीवन है।
वो कैसे?
अब्राहम ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। जब उनकी उम्र 100 साल थी और उनकी पत्नी सारा की कोख मृत समान थी, तब भी वे उस मृत्यु के बीच जीवन की यानी एक तरह से पुनरुत्थान की उम्मीद रखते हैं।
लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या अब्राहम का ये विश्वास शुरुआत से ही इतना मजबूत और अडिग था?
बिल्कुल नहीं, और यही तो।
क्योंकि अगर वे एकदम परफेक्ट थे तो आम इंसान उनसे कैसे जुड़ पाएगा? क्या वे कभी डगमगाए नहीं?
ये इस प्राचीन कथा का सबसे मानवीय पहलू है। डॉक्टर कीनर हमें याद दिलाते हैं कि शुरुआत में अब्राहम का विश्वास एकदम अपरिपक्व स्तर का था।
अच्छा।
हाँ, जब उन्हें लगा कि ईश्वर के वादे पूरे नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने हगार के जरिए बच्चा पैदा करने की अपनी खुद की योजना बना डाली। उन्होंने इंतजार नहीं किया।
तो मतलब उनका विश्वास परिपक्व होने में सालों का लंबा संघर्ष लगा।
बिल्कुल। ये एक प्रक्रिया थी जो अंततः जेनेसिस 22 तक पहुंचते पहुंचते उस स्तर पर आई जहां वे अपना सब कुछ सौंपने को तैयार थे। विश्वास कोई एक बार में हासिल होने वाली जादुई चीज नहीं है।
ये जो विश्वास की यात्रा है, जहाँ गलतियां भी होती है, संघर्ष भी होता है, यही चीज हमें स्वाभाविक रूप से रोमनों के अध्याय 5 की ओर ले जाती है।
हाँ, जहाँ रोजमर्रा के मनोविज्ञान की बात शुरू होती है।
सही कहा। अध्याय 5 की शुरुआत इस घोषणा से होती है कि अब हमारे पास ईश्वर के साथ शांति है, यानी हम दुश्मन नहीं रहे। लेकिन इसके तुरंत बाद पॉल एक ऐसी बात कहते हैं जो मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह विरोधाभासी लगती है।
आप दुखों में गर्व करने वाली बात कर रही हैं?
हाँ, वे कहते हैं कि हमें अपने दुखों में गर्व करना चाहिए। ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान जिम में जाकर बहुत भारी वजन उठा रहा हो, उसे भयंकर दर्द हो रहा हो, लेकिन वह अंदर ही अंदर खुशी मना रहा हो क्योंकि उसे पता है कि यह दर्द उसे मजबूत बना रहा है।
इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि प्राचीन दुनिया इस दर्द को कैसे देखती थी। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि पॉल यहाँ एक क्लासिक बयानबाजी की श्रृंखला का उपयोग करते हैं जिसे ग्रीक में सोराइट्स कहा जाता है।
सोराइट्स मतलब एक के बाद एक जुड़ने वाली कड़ियां।
बिल्कुल। पॉल की यह श्रृंखला कुछ इस तरह चलती है, दुख से दृढ़ता पैदा होती है, दृढ़ता से परखावा चरित्र बनता है, और परखे हुए चरित्र से अंततः आशा का जन्म होता है।
और डॉक्टर कीनर यहाँ दो ग्रीक शब्दों का अंतर भी समझाते हैं।
हाँ, पहला है डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब है वो चरित्र जो आग में तप कर पास हो गया है, जैसे शुद्ध सोना।
और दूसरा है अटाकिमोस, यानी वो चरित्र जो दबाव में टूट गया।
तो जब कोई इंसान भयानक दुखों से गुजरकर भी अपना विश्वास बनाए रखता है तो वो डॉकी में बन जाता है, उसे खुद पर एक अलग ही स्तर का भरोसा हो जाता है।
एकदम सही। और इसी दृढ़ता को लेकर धर्मशास्त्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी बहस भी होती रही है कैल्विनवादी और अर्मेनियन विचारधाराओं के बीच।
कि क्या एक बार विश्वास मिल गया तो वो हमेशा बना रहता है, या इंसान जीवन के दुखों में टूटकर भटक सकता है?
बिल्कुल। डॉक्टर कीनर बहुत ही चतुराई से इस बहस में किसी एक का पक्ष लेने से बचते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि दोनों पक्ष इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि सच्चा विश्वास वही है जो अंत तक टिका रहे, जिसे परसेवेरेंस कहते हैं।
मतलब अगर कोई व्यक्ति दुख में टूटकर पूरी तरह अलग हो जाता है तो बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या उसका वो विश्वास शुरुआत में ही सच्चा था
या फिर सिर्फ एक भावनात्मक दिखावा था।
तो ये जो दृढ़ता है, ये जो उम्मीद है, ये हवा में तो नहीं लटक सकती, इसे टिकने के लिए किसी बहुत ही ठोस चीज का सहारा चाहिए।
हाँ, और यहीं से हम अपने स्रोत के अंतिम हिस्से पर आते हैं।
बिल्कुल, वो चीज जो इस पूरी उम्मीद को खोखला होने से बचाती है। रोमनों 5 कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे दिलों में प्रेम उंडेलता है।
और ये प्रेम किस तरह का है, ये समझना प्राचीन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक झटका था।
वो कैसे?
प्राचीन ग्रीक संस्कृति में ये माना जाता था कि अपने दोस्तों के लिए जान दे देना सबसे बड़ा मानवीय आदर्श है।
लेकिन पॉल यहाँ एक अभूतपूर्व विचार रखते हैं
कि यीशु ने अपने दुश्मनों के लिए अपनी जान दी।
हाँ,
उन लोगों के लिए जो उनसे नफरत कर रहे थे। ये प्रेम की एक ऐतिहासिक और भौतिक रूप से घटित हुई घटना थी।
इस सैद्धांतिक बिंदु को जमीन पर उतारने के लिए डॉक्टर कीनर ने एक बहुत ही मार्मिक कहानी भी साझा की है।
हाँ, उनके अपने युवा दिनों की कहानी।
उन्होंने हताश होकर ईश्वर से पूछा था, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? और उन्हें अपने दिल में एक आवाज सुनाई दी, क्रूस की ओर देखो, यीशु के हाथों की कीलों को देखो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो डॉक्टर कीनर का ये पूरा व्याख्यान इसी भावनात्मक निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। यहाँ पॉल रोमनों 5:11 में एक इंक्लूसियो का इस्तेमाल करते हैं।
ये इंक्लूसियो क्या होता है, इसका क्या असर पड़ता है?
इंक्लूसियो प्राचीन साहित्य की एक तकनीक है जहाँ लेखक अपनी बात को वहीं लाकर खत्म करता है जहाँ से उसने शुरू की थी। एक तरह का फ्रेम। अध्याय 5 की शुरुआत हुई थी कि हम ईश्वर की आशा में खुशी मनाते हैं। और आयत 11 में वे फिर से उसी पर वापस आते हैं कि हम ईश्वर में खुशी मनाते हैं।
बिल्कुल, ये तकनीक पढ़ने वाले को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देती है। ये बताती है कि जब इंसान ये जान लेता है कि उसे एक बिना शर्त वाले प्यार से स्वीकार किया गया है, तो उसे खुद को साबित करने की दौड़ से मुक्ति मिल जाती है।
क्या बात है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम डॉक्टर कीनर के इस पूरे अकेडमिक विश्लेषण को आज के लिए संक्षेप में समेटें तो हमने देखा कि पूरी मानवता ईश्वर के सामने एक समान धरातल पर खड़ी है,
कोई ऊंचा या नीचा नहीं है।
बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अब्राहम नियम के आने से 13 साल पहले ही विश्वास के आधार पर नायक बन गए, जो साबित करता है कि असली धार्मिकता कमाई नहीं जाती, उपहार की तरह दी जाती है।
हाँ, एकदम सही। और अंततः हमने देखा कि दुखों से गुजरने वाली दृढ़ता का पूरा ढांचा ईश्वर के उस गहरे प्रेम पर टिका है जो अपने दुश्मनों के लिए भी जान दे देता है।
यह विश्लेषण मानव इतिहास और न्याय के बारे में सोचने का एक बहुत गहरा नजरिया देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुनिया को कर्मों के बही खाते से तोलते हैं या कृपा के नजरिए से देखते हैं।
सच में ये सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में जहाँ जरा सी असहमति पर लोग तुरंत एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर बहिष्कार करने पर उतारू हो जाते हैं, अगर दुश्मनों के लिए बलिदान और बिना शर्त प्रेम के इस प्राचीन दर्शन का सिर्फ 1% भी हमारे समाज में उतर जाए तो क्या ये हमारे रोजमर्रा की नफरतों का पूरा ढांचा नहीं बदल देगा? स्रोत सामग्री निश्चित रूप से इसी दिशा में एक बहुत गहरा इशारा करती है।